नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से वैश्विक स्तर पर अग्रणी पेशेवर कंपनियां बनाने का आह्वान किया, ताकि भारत परामर्श, लेखांकन, वित्तीय और कानूनी क्षेत्रों में दुनिया का नेतृत्व कर सके। नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान पहले आइस ब्रेक शिखर सम्मेलन का आयोजन भी होगा। इसमें 500 से अधिक संस्थागत निवेशक, वित्त मंत्री और उद्योगपति शामिल होंगे। ईरान की नौसेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर रहे 3 तेल टैंकरों पर हमले का दावा किया। रूस यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमरीकी दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर से मुलाकात की। अमरीकी दूत यूक्रेन से भी वार्ता करेंगे। और क्रिकेट में भारत ने दुबई में महिला T20 एशिया कप मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने तथा लेखा, वित्त, कानून और परामर्श से जुड़ी ऐसी संस्थाओं के निर्माण की अपील की है जो वैश्विक स्तर के हों। कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में उन्होंने कहा कि आज भारतीय मूल के कई लोग दुनिया के शीर्ष कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं।
भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं, तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भी भारत की तिमाही वृद्धि दर 7.8% रही है, जो उसकी आर्थिक क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत मामलों में गतिरोध से गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है और दुनिया देख रही है कि भारत सबसे तेजी से आर्थिक प्रगति करने वाला देश है।
दुनिया भारत को फ्रजाइल 5 बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है। और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
प्रधानमंत्री ने बताया कि अप्रैल से जून के बीच बिजली उत्पादन में 9% की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि इस दौरान वाहनों की बिक्री 20% से अधिक बढ़ी। उन्होंने बताया कि स्मार्टफोन का निर्यात अब 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक का है और घरेलू रक्षा उत्पादन लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ भारतीय मिलकर भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाएंगे।
मुझे विश्वास है हम 140 करोड़ भारतीय मिलकर अपने देश को विकसित भी बनाएंगे, आत्मनिर्भर भी बनाएंगे। आने वाले समय में भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब होगा। आने वाले समय में रिसर्च एंड इनोवेशन का हब हिंदुस्तान होगा। भारत एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की सुपर पावर होगा।
नई दिल्ली में इस महीने की 12 और 13 तारीख को आईब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 500 से अधिक संस्थागत निवेशक, वित्त मंत्री और उद्योगपति शामिल होंगे। ये आयोजन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समानांतर होगा। सम्मेलन का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य देशों और साझेदार देशों में संप्रभु पूंजी का उपयोग, भरोसेमंद बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और डिजिटल क्षमता परियोजना के लिए करना है। एक रिपोर्ट।
संप्रभु धन कोष, पेंशन कोष और परिवार कार्यालय कुल मिलाकर $1 ट्रिलियन मूल्य की संपत्ति का प्रबंधन करते हैं। सम्मेलन में सीमा पार निवेश, गैर डॉलर निपटान और भुगतान प्रणालियों पर चर्चा होगी। इसके अलावा भारत की UPI भुगतान प्रणाली और ब्राजील की पिक्स भुगतान प्रणालियों को जोड़ने तथा डिजिटल मुद्राओं में कारोबार पर भी चर्चा होने की संभावना है। ये शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब ब्रिक्स देश व्यापार गतिशीलता, अमरीकी शुल्क के दबाव और उच्च डॉलर लागत के समाधान के लिए स्वयं को अनुकूलित कर रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह 4 दिन की यात्रा पर कल सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंचे। श्री सिंह की सऊदी अरब की ये पहली यात्रा है। वो सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्री, विदेश राज्य मंत्री और जलवायु, पर्यावरण, जल तथा कृषि उपमंत्री से मुलाकात करेंगे। श्री सिंह सऊदी अरब में भारतीय मूल के लोगों, भारतीय व्यापार प्रमुखों, उद्यमियों तथा पेशेवरों से भी मिलेंगे। वो सऊदी अरब में कार्यरत भारतीय कामगारों से भी बातचीत करेंगे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ईरान की नौसेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर रहे 3 तेल टैंकरों और अमरीका से जुड़े 3 जहाजों पर हमले का दावा किया है। इससे पहले अमरीका ने फारस की खाड़ी और ओमान सागर में 3 ईरानी तेल टैंकरों पर हमला किया था। एक रिपोर्ट।
ईरानी नौसेना के अनुसार अमरीकी हमलों से जहाजों को नुकसान पहुंचा है और ये होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की कोशिश है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने होर्मुज और उसके आसपास चलने वाले जहाजों को अनधिकृत जलमार्गों से बचने की चेतावनी दी है। उधर अमरीका की केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा है कि ईरानी कच्चे तेल के टैंकर अरबों डॉलर के गुप्त नेटवर्क का हिस्सा थे। अमरीकी सेना ने कहा है कि टैंकर कायलो हमलों के बाद निष्क्रिय हो गया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने ईरानी वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों की कड़ी निंदा की है। उसने चेतावनी दी है कि अमरीकी हमलों और हस्तक्षेप के जारी रहने के परिणाम अमरीका और उसके सहयोगियों को भुगतने होंगे। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल अमरीकी दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर से मुलाकात की। ये मुलाकात रूस यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने के सिलसिले में थी। ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब रूस और यूक्रेन के बीच हवाई हमले जारी है। श्री पुतिन ने बातचीत के दौरान यूक्रेन पर रूसी हमले 3 दिन के लिए रोकने का आदेश दिया। जवाब में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन भी सोमवार तक रूस पर हमले रोकने को तैयार है। बातचीत में राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के हालात को जटिल बताया। अमरीकी दूत आज यूक्रेन की राजधानी कीव का दौरा करेंगे। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या 1344 हो गई है। इस घटना में 590 विदेशी नागरिकों सहित लगभग 5000 लोग अब भी लापता हैं। अब तक 13100 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। नुवाकोट जिले में 10 दिनों तक कीचड़ और मलबे के नीचे दबी एक 60 वर्षीय महिला को बचा लिया गया। मृतकों की पहचान के लिए कई मामलों में DNA परीक्षण का सहारा लिया जा रहा है। लोगों को अपने रिश्तेदारों की पहचान करने में सहायता के लिए 1270 अज्ञात शवों का विवरण नेपाल पुलिस की वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया गया है। बचाव और राहत सामग्री वितरण, शव प्रबंधन और सड़क सफाई के लिए प्रभावित क्षेत्रों में लगभग 7912 पुलिसकर्मी तैनात हैं। महिला क्रिकेट में दुबई में T20 एशिया कप के ग्रुप ए के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 18 ओवर और एक गेंद में केवल 55 रन बनाकर आउट हो गई। ये T20 में उसका अब तक का सबसे कम स्कोर है। भारत ने 8 ओवर और 4 गेंद में ये लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की ओर से स्पिनर श्रीचरणी और प्रेमा रावत ने 3-3 जबकि दीप्ति शर्मा ने 2 विकेट लिए। ये मैच हरमनप्रीत कौर का बतौर कप्तान 150वां T20 मैच था। वो पुरुष या महिला क्रिकेट में ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली कप्तान हैं। अभी अभी प्राप्त खबरों के अनुसार मिस्र की एक अदालत ने टीवी एंकर सारा खलीफा समेत 12 लोगों को ड्रग तस्करी के मामले में मौत की सजा सुनाई है। सभी दोषियों को फांसी दिए जाने का आदेश दिया गया है। अदालत ने माना कि आरोपी एक आपराधिक गिरोह चला रहे थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से वैश्विक स्तर की अग्रणी पेशेवर कंपनियां बनाने का आह्वान किया ताकि भारत परामर्श, लेखांकन, वित्तीय और कानूनी क्षेत्रों में दुनिया का नेतृत्व कर सके। नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान पहले IBRICS शिखर सम्मेलन का आयोजन भी होगा। इसमें 500 से अधिक संस्थागत निवेशक, वित्त मंत्री और उद्योगपति शामिल होंगे। ईरान की नौसेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर रहे 3 तेल टैंकरों पर हमले का दावा किया। रूस यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमरीकी दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर से मुलाकात की। अमरीकी दूत यूक्रेन से भी वार्ता करेंगे। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।